रोम और स्पार्टा के साथ पुनः मित्रता। अध्याय 12। योनातान ने देखा कि स्थिति उसके अनुकूल है, इसलिए उसने कुछ लोगों को चुनकर रोम भेजा, जिससे वो रोमियों के साथ मित्रता का संबंध फिर स्थापित करे। उसने स्पार्टा वासियों और अन्य स्थानों के लोगों को इस आशय के पत्र भेजे। वे रोम आए और वहां उन्होंने परिषद में यह कहा, प्रधान याजक योनातान और यहूदी लोगों ने हमें आपके पास भेजा है, जिससे हम आपके साथ मित्रता का संबंध फिर स्थापित करें और संधि करें। परिषद ने उन्हें हर प्रदेश के अधिकारियों के नाम पत्र दिए, जिससे वे सकुशल यूदा पहुंचने में उनकी सहायता करें। योनातान ने स्पार्टावासियों के नाम जो पत्र लिखा, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है, प्रधान याजक योनातान, यहूदी परिषद, याजकों और यहूदी प्रजा का स्पार्टा के भाइयों को नमस्कार। आज से पहले भी आप लोगों के राजा अरियस ने प्रधान याजक ओनियस को पत्र भेजा, जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ साथ भेजी जा रही है। ओनियस ने उस दूत का सादर स्वागत किया था, उससे वो पत्र मिला था जिसमें संधि और मित्रता का प्रस्ताव किया गया था। ये सच है कि हमें इस प्रकार के संबंध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में जो धर्म ग्रंथ विद्यमान है उनसे हमें सांत्वना मिलती है। फिर भी हमने दूत भेजकर संधि और मित्रता फिर स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिससे हम आपकी दृष्टि में पराए न हो जाएं, क्योंकि आपके पिछले पत्र के बाद बहुत समय बीत गया है। हम महापर्वों और अन्य निश्चित दिवसों पर अपने बलिदानों और प्रार्थनाओं में सदा आप लोगों को याद करते हैं, जैसे अपने भाइयों का स्मरण करना उचित और आवश्यक है। हमें आपकी महिमा का गर्व है। इस बीच हमारे बुरे दिन आए, हम पर अनेक आक्रमण हुए और हमारे पड़ोसी राजाओं ने हमसे युद्ध किया, लेकिन इन लड़ाइयों में हमने अपने संधिबद्ध मित्रों को कष्ट नहीं देना चाहा, क्योंकि हमारी सहायता का स्रोत ईश्वर था, वहीं से हमें सहायता मिलती रही। अब हम अपने शत्रुओं से मुक्त हो गए, हमारे शत्रुओं को नीचा दिखाया गया, इसलिए हम अंतियोख के पुत्र नूमेनियस और यासोन के पुत्र अंतिपातेर को चुनकर रोमियों के यहां भेज रहे हैं, जिससे वे वहां जाकर उनके साथ संधि और मित्रता का संबंध पहले की तरह स्थापित करें। हमने उन्हें आदेश दिया है कि वे आप लोगों के पास भी जाएं, आपको नमस्कार करें और हमारा पत्र आपको दें, जिसमें संधि के नवीनीकरण और मित्रता का संबंध फिर स्थापित करने का प्रस्ताव है। आप इसका उत्तर देने की कृपा करें। उन्होंने जो पत्र ओनियस को भेजा, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है, स्पार्टावासियों के राजा अरियस का महायाजक ओनियस को प्रणाम। स्पार्टावासियों और यहूदियों के संबंध में एक अभिलेख से मालूम होता है कि दोनों भाई हैं और दोनों इब्राहिम के वंशज हैं। जब हम लोग ये जानते हैं तो आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी यदि आप अपने कुशल क्षेम के विषय में हमें पत्र देंगे। हम आपसे ये कहते हैं कि आपके पशु और आपकी संपत्ति हमारी है और जो कुछ हमारा है वो आपका है। हम ये आदेश देते हैं कि आपको इसकी सूचना दी जाए। सीरिया में योनातान। योनातान ने सुना कि देमेत्रियस के सेनापति पहले से भी बड़ी सेना लेकर उससे लड़ने आ रहे हैं, इस पर वो यरूशलेम से चल पड़ा और हमात प्रदेश में उनका सामना करने गया। वो उन्हें अपने देश में पैर रखने का अवसर नहीं देना चाहता था। उसने उनके पड़ाव में गुप्तचर भेजे, जिन्होंने लौटकर बताया कि वे यहूदियों पर इसी रात आक्रमण करने की तैयारियां कर रहे हैं। योनातान ने सूर्यास्त के बाद अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे जगे रहें और सारी रात अस्त्र शस्त्र से लैस पड़ने को तैयार बैठे रहें। उसने पड़ाव के आसपास पहरे बिठा दिए। जब शत्रुओं ने देखा कि योनातान और उसके आदमी युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं तो वे भयभीत निरुत्साह हो गए और उन्होंने अपने पड़ाव में जगह जगह आग जलाई। योनातान और उसके आदमियों को सवेरे तक ये पता नहीं चला कि शत्रु खिसक गए हैं, क्योंकि वे आग जलते देखते रहे। योनातान ने उनका पीछा किया, किंतु वो उन्हें पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वे एलुथरस नदी के पार जा चुके थे। इसलिए योनातान उन अरबों की ओर चल पड़ा जो जबादी कहलाते हैं। उसने उन्हें हरा दिया और लूटा। वो पड़ाव उठाकर दमिश्क पहुंचा और उसने उस समस्त प्रदेश का भ्रमण किया। फिलिस्तिया में सिमोन। उधर सिमोन भी चलकर अशकलोन और उसके आसपास के गढ़ों तक आ पहुंचा था। फिर उसने याफा की ओर मुड़कर उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उसने ये सुना था कि वहां के निवासी वो गढ़ देमेत्रियस के लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए उसने उसकी रक्षा करने के लिए वहां एक सेना दल रख दिया। यरूशलेम की मरम्मत। योनातान ने लौटकर जनता के नेताओं की एक सभा बुलाई और ये निश्चय किया कि यहूदिया के गढ़ों का पुनर्निर्माण किया जाए, यरूशलेम की दीवार और ऊंची कर दी जाए तथा गढ़ और नगर के बीच एक बड़ी ऊंची दीवार उठाई जाए जिससे गढ़ नगर से एकदम अलग हो जाए और वहां बसने वाले लोग नगर में न कुछ खरीद सकें और न बेच सकें। उन्होंने मिलकर नगर का पुनर्निर्माण किया, क्योंकि नाले वाली दीवार का जो पूर्व की ओर थी एक भाग गिर गया था। उसने खफेनाथा नाम के मोहल्ले की भी मरम्मत कराई। सिमोन ने भी निचले प्रदेश के अदीदा का निर्माण किया और उसे सुदृढ़ बनाया। उसने उसमें फाटक और अर्गलाएं लगाई। योनातान की गिरफ्तारी। त्रिफोन, एशिया का राजा बनना, अपने सिर पर मुकुट पहनना और राजा अंतियोख का वध करना चाहता था, किंतु ये सोचकर कि योनातान उसे ऐसा नहीं करने देगा और संभवतः उसके विरुद्ध युद्ध करेगा, उसने उसे बंदी बनाने और उसे मार डालने की योजना बनाई। इसलिए वो चलकर बेतशान आ पहुंचा। योनातान उसका सामना करने के लिए 40,000 चुने हुए योद्धा लेकर बेतशान गया। त्रिफोन ने जब देखा कि वो इतनी बड़ी सेना लेकर उससे मिलने आया है तो उसे उस पर आक्रमण करने का संकोच हुआ। त्रिफोन ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया, अपने मित्रों से उसका परिचय कराया, उसे उपहार दिए और अपने सभी मित्रों एवं अपनी सेना को आदेश दिया, तुम लोग मेरी बात की तरह योनातान की बात भी मानो। उसने योनातान से कहा, आपने इतने लोगों को क्यों कष्ट दिया जबकि हम दोनों में कोई युद्ध नहीं है? लोगों को अपने अपने घर भेज दें, अपना साथ देने के लिए कुछ आदमी चुन लें और मेरे साथ पतोलेमाइस चलें। मैं वो नगर और अन्य गढ़, शेष सैनिक और सभी पदाधिकारी आपके हाथ दूंगा और उसके बाद मैं घर लौट जाऊंगा। मैं तो इसीलिए यहां आया ही हूं। योनातान ने उस पर विश्वास कर लिया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। उसने अपने सैनिकों को चले जाने का आदेश दिया कि वे यूदा देश लौट जाएं। उसने केवल 3,000 आदमियों को अपने पास रखा उसने उनमें 2000 को गलीलिया में रखने का निश्चय किया और 1000 को अपने साथ ले जाने का। योनातान ने जैसे ही पतोलेमाइस में प्रवेश किया, पतोलेमाइस वासियों ने फाटक बंद कर दिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उन सबों को तलवार के घाट उतार दिया जो उसके साथ अंदर आए थे। इसके बाद त्रिफोन ने सैनिकों और घुड़सवारों को गलीलिया और बड़े मैदान की ओर भेजा, जिससे वे वहां योनातान के सब आदमियों का विनाश कर दें। उधर उन लोगों ने यह सुना कि योनातान बंदी बना लिया गया है और अपने आदमियों के साथ उसका वध कर दिया गया है, तब वे एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए शत्रु का सामना करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जिन्होंने उनका पीछा किया वे ये देखकर लौट गए कि यहूदी अपनी प्राण रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार सभी यहूदी सकुशल यूदा लौट आए। उन्होंने योनातान और उसके आदमियों के लिए विलाप किया। वे बहुत भयभीत थे। समस्त इज़राइल ने महान शोक मनाया। आसपास जितनी अन्य जातियां थीं, वे सब यहूदियों का विनाश करना चाहती थीं। वे कहती थीं, उनका न तो कोई नेता है और न कोई सहायक। अब हम उनसे लड़ेंगी और मनुष्यों के बीच से उनका नाम तक मिटा देंगी।